ये आकाशवाणी है। अब आप प्रियंका अरोड़ा से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में आज श्री मोदी ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे उभरते क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से अवसरों के नए रास्ते खुल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेशन और उद्यमिता से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, साफ सफाई, आवास, खेल, विज्ञान और शासन तक महिलाएं अलग अलग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों रविवार को फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स शिखर सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फ्रांस के नीस में इस आयोजन के दौरान भारत की नई पीढ़ी के नव प्रवर्तकों, कारोबार जगत और वैश्विक जरूरतें पूरी करने वाले अनुसंधान समाधानों का प्रदर्शन किया जाएगा।
भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने प्रधानमंत्री जी की इस विजनरी सजेशंस को एक एक्शन में परिवर्तित किया है। एक बहुत क्रिटिकल स्क्रूटिनी के माध्यम से हजारों प्रपोजल के अंदर से 120 स्टार्टअप्स को सिलेक्ट किया गया है। 13 प्रायोरिटी सेक्टर में 120 स्टार्टअप्स को इकट्ठा किया गया है और उसमें लगभग 20 से ज्यादा भारत की प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस की पार्टनरशिप रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अमरनाथ यात्रा करने वाले भक्तों की सुरक्षा और सुगम तीर्थ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने आज नई दिल्ली में श्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक शामिल हुए। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चलेगी। कैबिनेट सचिव डॉ टीवी सोमनाथन ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह के साथ बैठक में नीट पुनः परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने पुनः परीक्षा के सुचारू, पारदर्शी और सुरक्षित आयोजन के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री सोमनाथन ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और जिला प्रशासन पुनः परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार ने खुदरा पेट्रोल पंपों से संस्थागत औद्योगिक और वाणिज्यिक ग्राहकों के ईंधन खरीदने पर रोक लगा दी है। सरकार ने कहा है कि इन्हें अपनी जरूरत का पेट्रोल और डीजल थोक बिक्री केंद्रों से ही लेना होगा। ये निर्णय पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में आई बाधाओं के बीच स्थानीय स्तर पर ईंधन की कमी को रोकने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध 90 दिनों तक लागू रहेगा। इस बीच विदेश मंत्रालय ने आज भारत में अमरीकी दूतावास के उप प्रमुख जेसन मीक्स को तलब किया। मंत्रालय ने ओमान तट के निकट वाणिज्यिक जहाजों पर अमरीकी नौसेना के निरंतर हमलों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। इन जहाजों पर चालक दल के सदस्यों में भारतीय शामिल थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। इसी तरह के एक हमले में जहाज पर तैनात 3 भारतीय मारे गए। पश्चिम एशिया में संघर्ष रोकने के राजनयिक प्रयासों से अब तक कोई हल नहीं निकला है। अमेरिका के साथ प्रस्तावित समझौते पर ईरान ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बातचीत में जल्द ही सफलता मिल सकती है। ईरान में उच्च स्तरीय वार्ताएं आगे बढ़ने के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान पर सैन्य हमले रद्द कर दिए हैं। दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को आज 30 वर्ष की जेल की सजा सुनाई। अदालत ने उन्हें उत्तर कोरिया के साथ तनाव बढ़ाने के लिए ड्रोन घुसपैठ का आदेश देने और दिसंबर 2024 में मार्शल लॉ लागू करने को उचित ठहराने का दोषी पाया। पूर्व रक्षा मंत्री किम योंग ह्यून को भी इस मामले में 30 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पीवी सिंधु ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान की अकाने यामागुची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।